नमस्कार, हम बात कर रहे हैं बच्चों की। कहते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो समाज में जो कुछ हो रहा है उसी का आईना होता है, लेकिन कई बार समाज में जो कुछ हो रहा है अगर वो सही नहीं हमें लगता है तो हमें अपने जीवन को ज्यादा बेहतर बनाने की जरूरत है, हमें ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है। इन दिनों जो हम बात कर रहे हैं वो छोटे बच्चों से जुड़ी हुई कर रहे हैं कि कैसे उनके जीवन में कई बार कुछ घटता है जो आगे चलकर मेंटल हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम्स का भी रीजन हो सकता है। इन्हीं पर कुछ और बात करते हैं। आज भी हमारे साथ हैं वेल नोन साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा। डॉक्टर शर्मा, एक बार अगर हमें अवेयरनेस हुई, हम चाइल्ड अब्यूज की बात कर रहे थे और वो एक्चुअली मैं सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज पे ही ना करें, बुलिंग की भी बात है, या कई और सारे मुद्दे हैं जिसमें बच्चा इफेक्टेड हुआ है और पेरेंट के सामने बात आ गई है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? बिकॉज पेरेंट पैनिक होता है और एक्चुअली उनको समझ ही नहीं आती कि कहां से मदद लें और कैसे उस बच्चे की हीलिंग करें।
ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कि ज्यादातर पेरेंट्स किसी से बात नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं एक फीलिंग ऑफ शेम रहती है उनके लिए भी और बच्चे के लिए भी। वैसे ज्यादातर बच्चे अगर उनको सेक्स के बारे में नहीं मालूम तो उनके लिए ये जो इवेंट है वो सिर्फ एक इवेंट होता है। जब वो इसके बारे में समझते हैं तो उन्हें पता लगता है कि एक्चुअली हुआ क्या। फिजिकल अब्यूज जो है उसमें उन्हें चोट लगती है, बुलिंग जो है उसमें उन्हें मानसिक चोट लगती है, दे फील स्लाइटेड, उनको ओप्रेस किया जाता है। तो तीनों में थोड़ा सा एक फर्क है। जहां तक रही बात सेक्सुअल अब्यूज की, सबसे जरूरी चीज होती है इस चीज को रिपीट होने से रोकना। दूसरी होती है कि बच्चे में उसके फ्यूचर को लेकर या ये महसूस करा के कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ, उसका ध्यान इस पर ना खिंचवाना। ये ध्यान रखना कि ये फिर से कभी ना हो। ये ध्यान रखना कि बच्चा थोड़ा सा, स्पेशली अगर वही व्यक्ति है, क्योंकि अगर कोई जानने वाला है और उसको इससे आगे नहीं रोका गया, चाहे वो कोई परिवार का ही व्यक्ति हो, अगर उस चीज को छोड़ दिया गया तो वो चीज फिर से रिपीट हो सकती है। तो उसको फिर से ना रिपीट होने के लिए जरूर ध्यान रखना, इंक्लूडिंग कि अगर उस व्यक्ति से बात करने की जरूरत है, अगर उस व्यक्ति को वहां से हटाने की जरूरत है, वो सब करना। लेकिन बच्चे का बार बार ध्यान उस पर ना लाना। ज्यादातर बच्चे अगर कोई बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक अब्यूज नहीं हुआ है तो इस चीज को भूल जाते हैं। और समय के साथ साथ उनका इस पे ध्यान जाता नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत देर तक हुआ है या बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक रूप से हुआ है या उसके बाद उनको ये डर लगता है कि शायद इसमें मेरी गलती निकाली जाएगी, या उनको लगता है कि उनकी वजह से पेरेंट्स को आघात हुआ है या पेरेंट्स हर्ट हुए हैं, तो वो इसको इंटरनलाइज कर लेते हैं और कई बार वो अपने आप को उसके कारण मानना शुरू कर लेते हैं। कुछ पेरेंट्स या बाहर वाले भी कई बार ऐसा भी कह देते हैं कि ये तो तुम्हारी वजह से हुआ, या तुम्हें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था, या तुम पास गए ही क्यों, तुमने रोका क्यों नहीं, वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से कई बार बच्चे को लगता है कि शायद मैंने कुछ गलत सिग्नल दिए या मैं इसका हिस्सेदार था। वो कभी नहीं होना चाहिए। प्लस कई बार हम उनका विश्वास नहीं करते, कई बार इसलिए भी क्योंकि जिस व्यक्ति ने अगर किया है, खासतौर पे अगर वो बाहर वाला नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद ये सही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, बच्चे ने कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लिया वगैरह वगैरह। बच्चे आमतौर पर इस चीज के बारे में झूठ नहीं बोलते। एटलीस्ट उनकी बात को मान लेना और कह देना यस इट इज समथिंग विच शुडंट हैव हैपेंड, हम इसका ध्यान रखेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, तुमने कोई गलती नहीं की है, हम तुम्हें जैसे हो वैसा एक्सेप्ट करते हैं, और आगे के लिए उनको एक सपोर्ट भी देना और साथ साथ उनके डर को कम भी करना और इस चीज को मुद्दा नहीं बनाना।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, कि कई बार पेरेंट्स इतना पैनिक क्रिएट कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि इसके रिपरकशन इतने ज्यादा आगे बच्चे पर होंगे. सो यू नो लाइक आई वॉन्ट यू टू क्लैरिटी, मतलब यहाँ पे अगर हमारे सामने क्लैरिटी आए कि अगर बच्चा अवेयर ही नहीं है उस एक्ट के बारे में बेसिकली, तो उसके लिए ये कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा आगे चलकर भी नहीं बनेगा.
अगर कभी कभार एक आधी बार हुआ है तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर एक लंबे अरसे तक चला है और उसकी वजह से बच्चा समझ नहीं पाता है कि उसको हैंडल कैसे करे, या उसकी वजह से मान लीजिए उसकी पढ़ाई में या उसके दूसरों से रिश्ते में फर्क आया है, या वो जब समझने लगा है उसके बाद भी ऐसा होता रहा है, उसके रिपरकशंस जरूर हो सकते हैं. और ऐसे समय में फिर पेरेंट्स को किसी काउंसलर से मदद लेने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि ये बाद में जाके किसी और व्यक्ति के साथ ट्रस्ट बनाने में या रिलेशंस बनाने में बहुत बड़ा बाधक सिद्ध होता है. लेकिन वहां पर भी कई बार अगर हम उसके साथ रहते हैं उससे कि इससे आपकी जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं पड़ना, और वैसे अगर देखा जाए तो जितना हम उसको याद करते हैं तो वो नेगेटिव मेमोरीज ज्यादा असर डालती हैं देन अ चांस एनकाउंटर. स्पेशली अगर कहीं बाहर कोई टचिंग हुई, ज्यादातर लोग भूल जाते हैं उस चीज को. फिजिकल अब्यूज जबकि वो वायलेंट होता है, और हर फिजिकल अब्यूज किसी ना किसी रूप में वायलेंट होता है, लेकिन अगर उसकी वजह से उस पर चोट के निशान है तो वो चोट जो है वो मन पे भी आती है. उसको कहीं ना कहीं ये फीलिंग कि वो वनरेबल है, कि उसके पास सपोर्ट सिस्टम्स नहीं है. कुछ बच्चे उसकी वजह से विड्रॉ कर जाते हैं, कुछ बच्चे उसकी वजह से और एग्रेसिव बन जाते हैं, खास तौर पे उन परिवारों में जहां पे कि पेरेंट्स कहते हैं कि अच्छा उसने तुझे किया तो तुम भी ज्यादा जाके करो, तो वो उसी आंकड़े में घूमने लग जाते हैं. लेकिन बुलिंग में भी एक चीज और देखी गई है कि जो बुलिंग करता है उसमें भी कहीं ना कहीं सेल्फ एस्टीम की कमी है, वो कहीं भी अपने आप को पूरक नहीं महसूस करता, इसके लिए वो दूसरे के ऊपर ऑपरेशन करता है ताकि वो कुछ समय के लिए अच्छा महसूस कर सके. उन परिवारों में भी आमतौर पे किसी न किसी तरह के डिसफंक्शन होते हैं, या बच्चे में चाहे थोड़े समय के लिए या लंबे समय से उसको ऐसा लगता है कि वो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, नॉर्मल नहीं है, और अगर वो दूसरे को दबाएगा तभी वो अच्छा महसूस कर सकता है. तो इन सब में कुछ समय के लिए उसको सपोर्ट करना और उस माहौल को बदलना जहां पे कि वो पॉजिटिव रूप से अपने आप को जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर सके, और जो जो उसमें गुण हैं उनको एक एक्सेप्टेबल, सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर के रूप में बिना दूसरे पे वायलेंस किए वो व्यक्त कर सके. और इसके लिए फिर स्कूल्स को भी, इसके लिए परिवारों को भी काम करना पड़ता है, और जितना जल्दी करेंगे उतना वो बिहेवियर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो स्लाइटली ओल्डर चिल्ड्रन होते हैं वो अगर एडोलेसेंस में इस सब बैकलॉग के साथ, इस सब मानसिक स्थिति के साथ जाते हैं तो उनमें फिर अपने पेरेंट्स के साथ एक प्रॉपर रिलेशनशिप बनना, दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनना नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जब वो एक अब एडल्ट बनने वाले हैं तो वहां पे कुछ गलत बिहेवियर्स शुरू हो सकते हैं जो लॉन्ग टर्म में उनको मुश्किल पैदा.
अब टाइम ये भी है तो आ रहा है कि हार्मोनल चेंज से भी गुजरने वाला है बच्चा. आपके पास कोई आया जिसने कभी ये कहा हो कि आई इंडल्ज इन चाइल्ड अब्यूज?
जी,
पीपल आर अवेयर एंड देयर वर्किंग.
पीपल आर अवेयर, और कई बार एक इम्पल्स होती है जो कुछ लोग संभाल नहीं पाते, और ऐसा भी पाया गया है कि वो व्यक्ति जो खुद अब्यूज का शिकार रहा हो अपने बचपन में और उस समय उसको उससे बहुत हीन भावना आई, वो कहीं ना कहीं एक बीज बन सकता है फ्यूचर में उस व्यक्ति का, अपनी उस फीलिंग को कम करने के लिए ऐसे ही बिहेवियर में जाने का. साथ ही साथ दो और बड़ी चीजें मैं समझता हूँ इस समय समाज में हो रही हैं जो कि इस चीज को बढ़ावा देती हैं. एक है पोर्नोग्राफिक मटेरियल, जो आज के समय में सेलफोन पे भी अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल है, और दूसरा है किसी ना किसी नशे में उस व्यक्ति का होना, स्पेशली अल्कोहल,
क्योंकि आप होश में ही नहीं है,
तो उस समय में आपका अपने पे कंट्रोल कम हो जाता है। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि खास तौर पे वो व्यक्ति जो किसी अपने क्लोज बच्चे के साथ इस तरह का कुछ करते हैं, वो भी अंदर से बहुत गिल्ट महसूस करते हैं, उनको भी बुरा लगता है, पर वो उस समय में अपने आप को रोक नहीं पाते। इट्स लाइक अ कंपल्सिव बिहेवियर कि वो एक आई फीलिंग, उस फीलिंग को पूरा किया, उस समय उनको लगा कि हाँ करना चाहिए, और उसके बाद गिल्ट महसूस हुआ। तो इसमें उनको किस तरह से अपने आप को फिजिकली उस सिचुएशन से दूर रखना है, खास तौर पे कई बार ये भी सजेशन दी जाती है उन्हें कि आप किसी और को ये बात बता दें, ताकि वो कोशिश करें कि वो आपके साथ रहें, ताकि आप उस बच्चे के साथ एक्सेस ना कर पाए, और अगर हो सके तो फिजिकली दोनों को एक दूसरे के साथ दूर कर दिया जाए। लेकिन अगर ये इम्पल्सेस किसी और बच्चे के साथ भी आ रही हैं, तो उस व्यक्ति को पोर्नोग्राफिक मटेरियल, अल्कोहल या दूसरे सब्सटेंस अब्यूज रोककर और अपने आप के ऊपर लगातार विद थेरेपी काम करके सेक्सुअल इम्पल्सेस को कम करने की भी जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि आज के समय में ये सिर्फ सोशल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक लीगल इश्यू भी है, और उसकी वजह से वो बहुत बड़ी किसी प्रॉब्लम में भी पड़ सकते हैं। तो एक बात जरूर हुई है कि क्योंकि थोड़ी सी ओपननेस इस बारे में कुछ सालों से हुई है, तो जो पहले छुपे रूप में हो जाता था, और जो व्यक्ति पीड़ा से गुजर रहा है, चाहे वो विक्टिम है चाहे वो परपेट्रेटर है ऑफ द होल थिंग, वो दोनों किसी से बात ही नहीं कर पाते। तब कम से कम ये बात सामने आने के कारण जो बच्चे हैं, जो कि एडोलेसेंट में अगर इसी रूप में चले जाते हैं, और फिर उसका कष्ट कई बार पूरे जीवन उनके साथ चलता है, किसी से शेयर नहीं कर पाते, तो वो चीजें जरूर थोड़ी सी कम हो रही है, नहीं तो उसी के साथ फिर कई और चीजें जुड़ जाती हैं। कई बार एक्सपेरिमेंटेशन विद सेक्स है, जो कि एडोलेसेंस में कई बार शुरू हो जाता है, उसमें भी इस चीज का, या अगर पेरेंट्स के साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं है तो पेरेंट्स को कई बार पता ही नहीं लग पाता, या एक्सपेरिमेंटेशन विद अल्कोहल, टबैको या दूसरी ड्रग्स है उन बच्चों में, जो कि वो बहुत किसके साथ कनेक्टेड नहीं है, या हीन भावनाओं से गुजर रहे हैं, या डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, या स्कूल में कोप अप नहीं कर पा रहे, उस चीज से गुजर रहे हैं, तो उनके साथ भी ऐसा होना शुरू हो जाता है। और कई बार अपने शरीर को ही एडोलसेंस में बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो उसकी वजह से भी उनमें ये प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाती है, और पेरेंट्स से कंट्रोल
लग जाते हैं। यही बात कि हार्मोनल चेंजेस का जो ये दौर है, ये सबसे आई थिंक कहा जाता है कि डिफिकल्ट टाइम ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि बहुत कुछ बदल रहा है, इवन सोशल सेटिंग्स बदल रही होती हैं, हमारी नई जो बच्चा है उसके लिए नई दुनिया होती है, और अपना शरीर ही एक नई दुनिया के रूप में सामने आ रहा होता है, इमोशनली हैंडलिंग नहीं हो पा रही होती है। हाउ इम्पोर्टेंट पेरेंट चाइल्ड बॉन्डिंग या फिर एक थर्ड इंटरवेंशन जरूरी है, क्योंकि यहां पर कौन कौन सी जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो आ सकते हैं सामने।
पेरेंट चाइल्ड बॉन्डिंग अगर बचपन से हो तो वो स्मूथली एडोलेसेंस में जा सकती है। कई बार जब बच्चे रिबेल करना शुरू करते हैं, तो ये सोच के कि अरे ये तो उम्र ही ऐसी है, उनको छोड़ दिया जाता है, या कई बार जब हम हैंडल नहीं कर पाते हैं तो उनको नकारा जाता है, या कुछ सिचुएशंस में उनके ऊपर फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है दोनों पेरेंट्स के द्वारा, या एटलीस्ट एक पेरेंट के द्वारा। ये समय है जब कुछ खास तरह की मानसिक समस्याएं, स्पेशली बाइपोलर डिसऑर्डर्स, डिप्रेशंस, स्किजोफ्रेनियास, ये भी शुरू हो सकते हैं, और उसमें सिर्फ ये नहीं है कि वो जितना पहले विड्रॉन था उतना ही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीजें कि वो बहुत ज्यादा उदास है, वो किसी से बातचीत ही नहीं कर पा रहा, उसे कंफ्यूजन है, रोजमर्रा के जीवन को संभालना ही उसके लिए एक तरह से बोझ है, या फ्रेंड्स बिल्कुल ही कट ऑफ हो गए, या स्लीप साइकिल बिल्कुल ही अलग हो गया, या भूख बिल्कुल ही कम हो गई, یا پڑھائی بہت ڈراپ ہو گئی یا کچھ اب نارمل بیہیویئر ہو گئے, اسے کچھ ایسے ایکسپیرینسز ہوئے جو کسی اور کو نہیں ہوتے, اسپیشلی اس کو کبھی نہیں ہوئے, یا اس کو شک ہونے شروع ہو گئے, یا وہ وائلنٹ ہو گیا, تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی کچھ خاص مینٹل پرابلمز کو درشاتی ہیں اور وہ ایڈولیسنٹ کرائسس نہیں ہے. ایڈولیسنٹ کرائسس ویسے بھی کچھ دیر کے لیے کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ سچویشنز میں ہو سکتا ہے, لیکن اگر وہ ہر کسی کے ساتھ ہے یا نارمل سے زیادہ ہے یا اس بچے کے بیہیویئر سے بالکل الگ ہے, تو وہ پھر صرف ایڈولیسنٹ کرائسس نہیں ہے. اس کے لیے سیفیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کی مدد لیں تاکہ وہ کھل کے وہ ایڈولیسنٹ بھی بات کر سکے ان سے, کیونکہ شاید وہ ایز اے پیرنٹ آپ سے بات
نہیں کرنا چاہتے. اور ایکچولی ڈاکٹر کے پاس جانا مطلب یہ نہیں کہ وہ پرابلم ہے.
زیادہ تر اگر آپ جلد جو ایشو ہے اس کو سالو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس سمے کے ایشوز تھوڑے سے ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک طرح کا برج بن سکتا ہے کوئی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل دونوں کے بیچ, پیرنٹس اور بچوں کے بیچ, ایڈولیسنٹ کے بیچ, اور بات وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ چیز چلتی رہتی ہے, سمپٹمز بڑھتے رہتے ہیں, تو پھر وہ آگے جا کے ایڈولیسنٹ کے بعد ایڈلٹہڈ میں بھی پرابلمز سامنے آ سکتی ہیں.
ڈاکٹر اویدیش شرما, تھینک یو سو مچ آج کی اس بات چیت کے لیے. ہم نے پورے سارے ایج گروپس میں دیکھا ہے کہ کس طرح کے سمپٹمز جو ہیں وہ مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ کریٹ کر سکتے ہیں بچے میں. ارلی انٹرونشنز آر امپورٹنٹ. آج کی بات چیت کے لیے تھینک یو سو مچ.